نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل والبر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کی بہتات ہمیں دی ہے اور اس پانی کی بہتات سے فراوانی سے ہم پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, خوب پیتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب دی ہے, سمندروں میں پانی ہے, دریاؤں میں پانی ہے, آسمان سے بھی برساتا ہے, کنویں بھی محفوظ ہے, چشمے بھی نکلتے ہیں, دریا بھی بہتے ہیں, ندی بھی نکلتی ہیں, تو گویا لگتا ہی نہیں پانی کم ہے. خوب اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے کثرت کے ساتھ, اور ہم اس پانی کی استعمال کرتے ہیں. اور قدر کتنی ہے یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے آدمی کو, پانی کی قدر. ضائع بھی بہت کرتے ہیں اس کو, بلا وجہ بھی ٹیپ کھول لیتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا پانی دیا ہے ہمیں, کوئی توجہ نہیں تھا. اللہ اکبر, احساس کس وقت ہوگا اس پانی کا؟ اس وقت کہ جب کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے انسان پر, حالات آ جاتے ہیں کہ پانی بند ہو جاتا ہے. اکثر حالات آتے ہیں انسان پر, بلکہ چھوٹے پیمانے پہ آپ یہ سوچ لیں کہ کبھی ریپیئر کرنی ہو پانی کی اور کہیں جی پانی بند رہے گا تین دن, کیسے حالت ہو جاتی ہے آدمی کی. خوفزدہ ہوتا ہے, کبھی بوتل بڑھتا ہے, کبھی بالٹی میں بھرتا ہے, اور بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پانی بند ہو گیا, پانی بند ہو گیا, پانی بند ہو گیا. تو آدمی جناب اور ان مالک کے اندر جب ایسا حادثات ہو جاتے ہیں کہ پانی بالکل نہیں ملتا, ایک ایک بوند کو آدمی ترسے, پھر پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے. پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پانی بہت ضائع کیا, کاش ہم اس کی قدر کرتے. ایک ایک بوند کو, کبھی سہرے میں پھنس جائے آدمی, پانی کی قیمت معلوم ہوگی انسان کو, پتہ لگے گا کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے. اس وقت ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ پانی کی کیا قیمت ہے. روز حشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک شخص ہوگا بہت ہی پریشان نظر رہے گا, پریشان تو ساری ہوں گے, لیکن ایک مثال پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی حکمتوں سے بھری مثال ہے, جس کی تھوڑی سی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے پہلے. وہ شخص جو ہوگا حشر میں بے انتہا پریشان ہوگا, اور اس کو سب کیا چاہیے ہوگا, کیا چاہیے ہوگا جس کا سب پریشان ہوگا اس وقت, एक नेकी, कितनी? एक नेकी, एक नेकी सिर्फ, एक नेकी की वजह से इस कदर परेशान होगा कि जिन जिन लोगों पे वो मान करता था, माँ बाप बहन भाई दोस्त अहबाब, मांगता फिरेगा वो कहीं गिनने में, एक नेकी तो हम नहीं दे सकते, ये बहुत मुश्किल है, नेकी कोई नहीं मिलती। और वहाँ क्या होगा उस वक्त उस हश्र में क्या होगा, एक एक नेकी पे जन्नत और दोजख के फैसले होंगे, एक एक नेकी पर, एक नेकी जिसकी कम होगी वो जहन्नम में चला जाएगा, एक नेकी जिसकी सही हो जाएगी वो जन्नत में चला जाएगा। ये कहानी नहीं है, नबी करीम सब के शदात मैं आपकी खदमत पेश कर रहा हूँ ताकि हमें एहसास हो उस चीज़ का, एक नेकी। इस कदर परेशान हुआ शख्स, नबी करीम सरशात फरमाते हैं कि मैं कहीं से उसको नहीं मिलेगी, बस अब वो समझ जाएगा कि मेरी किस्मत में जहन्नम आ गई और मैं जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। तो वहाँ देखिए आदमी पूछेगा, भाई क्यों परेशान है, क्या बात है? कहे भाई मैं तो बहुत सख्त परेशान हूँ, मेरा जहन्नम का फैसला हो गया, बस एक नेकी की कमी की वजह से मुझे नेकी कोई नहीं देगा। बाद में कहेगा भाई बात यह है कि मेरे पास तो एक ही नेकी है, अब वो नेकी मेरे क्या काम आएगी, तो चल तू ले ले नेकी, तेरा काम तो बने, मैंने तो वैसे भी जाना है फारिग हूँ मैं तो, मेरा तो फैसला वैसे ही जहन्नम होगा, तू ये नेकी ले अपना काम तो बना। सुभानअल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर वो जब नेकी लेके अल्लाह के पास जाएगा और कहेगा या अल्लाह मुझे नेकी मिल गई, खुशी के साथ कहेगा अल्लाह ताला कहेगा तूने कहाँ से नेकी ली, अल्लाह खबीर वसीर है, ये फला शख्स था जी वो कहता था मेरे पास तो एक नेकी है तो मेरे किस काम आएगी, मैंने तो वैसे जहन्नुम में जाना है, तू ये नेकी ले तेरा काम बन जाएगा। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, कहते उससे पहले मैं उस शख्स को जन्नत में डालता हूँ जिसने तुझे नेकी दी, मुझसे बड़ा रहीम है और तू भी जन्नती और वो भी जन्नती, ये अल्लाह की रहमत के फैसले। तो आज अल्लाह सुबहाना तला ने पानी की इतनी जितनी बहुतात है आप देखने में मिसाल दी है, जमीन खोदो क्या निकलता है, पानी कुआं बन जाएगा, आसमान की तरफ तो जाओ बारिश, किस कदर बहुतात है पानी की। लेकिन ये तो दुनिया के मामले के लिए अल्लाह पाक ने रखा है, क्या हमें मालूम है इस चीज़ का, क्या एहसास है इस चीज़ का कि जिससे आखिरत का ताल्लुक होगा, जिससे आखिरत पे हमें बख्शिश मिलेगी और जन्नत और दोजख के फैसले होंगे, क्या उसकी तादाद नहीं रखी होगी अल्लाह पाक ने? ये तो कुछ भी नहीं है जो पानी हमें दिया बहुतात में, अल्लाह सुबह ताला ने जो नेकी कमाने के जराए वसाइल जो हमें दिए हैं उसकी तो इंतहा ही कोई नहीं है, उसकी तो इंतहा ही कोई नहीं है। अल्लाह सुबह ताला ने तो हर सांस के साथ मोमिन के नेकी कमाने का ताल्लुक रखा, किस कदर हम आप सोचें कि उस मकाम पर हम किस कदर पछताएंगे हम लोग अगर आज हमने उस कमाई को जाने दिया और ज़ाय करते रहे उन औकात को, उन मामलात को, उन चीज़ों को जिससे हम नेकी कमा सकते हैं। अल्लाह सुबहाना तआला ने बहुतात की हुई है, छोड़ी नहीं कोई चीज़, मोमिन के लिए तो इस कदर वसाइल है, इस कदर ज़राए अल्लाह पाक ने रखे हैं, इतने ज़राए के बावजूद भी इंसान वहाँ महरूम हो और नेकी ही ना उसके पास, नेकियाँ कम हो, तादाद कम हो, तो किस कदर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस बयान फरमाई है, किस तरीके से हमारे ज़मीनों को झंझोड़ा है अल्लाह के नबी ने, किस तरीके से एहसास दिलाया है कि वहाँ तो कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ एक नेकी, जो आज एक नेकी के तो हम तसव्वुर भी नहीं करते, आज नेकी की तो कोई कदर ही नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने तो ऐसे ऐसे वसाइल दिए हैं, ऐसे ऐसे कलमात दिए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इंसान, सुबह से लेकर शाम तक तो जब कर ले तो कोई एक सेकंड उसका ऐसा ना होगा जिसमें नेकी ना कमा सकता, मुझे पता है। थोड़ी देर के लिए मुराकबा करके सोच लें आप कि आज कितने औकात और कितना वक्त आज इस 24 घंटे में या 12 घंटे में हमने ज़ाय किया है कि जिसमें हमने नेकी नहीं कमाई, کتنے وقت ہوگا مجھے بتائیں, صبح سے لے کے اب تک باتیں کی ہوں گی, معاملات کیے ہوں گے, دکانوں پہ گئے ہوں گے, کاروبار کیا ہوگا, دوستوں سے ملے ہوں گے. اگر آپ اخمی آج ہی کا کر لیں, ہم لوگ آج ہی کا کر لیں, بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد اور زیادہ وہ تسبیحات کر لیں, کچھ نفل پڑھ لیں, بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں, بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. ذرا سوچیں, بس ہم پڑھ کافی یاد کر لیا, تھوڑی تلاوت کر لی, بس مطمئن ہو گئے. اتنی بہتات, اور کیوں دیے بہتات, پانی کی بہتات کیوں دیے کہ بھئی ہمیں نہانے کے لیے پانی کی ضرورت, پینے کے لیے پانی کی ضرورت, استنجا کے لیے پانی کی ضرورت, ہر چیز کے لیے پانی چاہیے, آدمی چاہیے نہیں چاہیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قدر بہتات دے دی پانی کی. تو نیکی کیونکہ اس قدر چاہیے ہوگی آخرت کے اندر, جنت کے فیصلے, پھر جنت کے مقامات, پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی, یہ ساری جتنی بھی چیز ہوں گی کس چیز میں انسان کے پاس ہیں, نیکیوں کے اندر ہے, نیکی ہیں. اور قصد کے ساتھ اللہ پاک نے اس کی وسائل دی ہیں, قصد کے ساتھ, یعنی ہم گن سکتے ہیں کہ کتنے کروڑ, کتنا نیکی, حج کلمات اللہ تعالیٰ نے اسے دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تعداد بھی بتا دی ہے, تعدادیں بتا دی ہیں کہ یہ ایک نیکی کا حال, اور آج تو صرف ایک سیکنڈ خرچ کرنے کے بعد اتنی نیکی کما سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہیں؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ دو دشمن ہیں, نفس اور کیا ہے, شیطان. کیوں نہیں سمجھتے ہم, کیوں نہیں سمجھتے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ریوارڈ دے گا, ہمیں 10 نیکی ملیں گی, 100 نیکی ملیں گی, 5 نیکی ملیں گی, ہم اس عمل کو کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات. صرف ہمیں آخرت کی طرف, اس حدیث کی طرف توجہ رکھیں, ہم ان میں شمار کریں, اس شخص کے اندر اپنے آپ کو شمار کریں کہ میں وہ شخص ہوں گا جس کے جو ایک نیکی کی تلاش میں جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں, کیونکہ یہ مجلس اسی قسم کی ہے, تو میں ایسی گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, یہ تصوف کی مجلس ہے, یہاں بزرگوں کس سے تذکیہ کس سے, تو اسی قسم کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور کچھ معاملہ نہیں ہے. یہ ایک مخصوص قسم کی مجلس ہے, یہ اور اسی انداز سے آپ لوگوں کو آنا چاہیے, اور مجھے بھی اسی انداز سے اس مجلس میں آنا چاہیے. صرف ایک چیز سوچ کے ہیں کہ یہ وہ مجلس ہے جو مختلف مجلس ہے, یہاں صرف کیا ہوگا, تزکیہ تصفیہ, ہمیں آخرت ہوگا, یہاں پر فکر آخرت ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ سمجھا, پھر میں بھی وہی بات کروں گا آپ سے کہ جس کا تعلق کسی چیز سے ہوگا, کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, یا کیا ہوگا, فکر آخرت ہوگا, چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیمانہ کرنا ہوگا. میں عرض یہی کر رہا تھا آپ سے کہ کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسائل دینے کے باوجود ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اس کو کتنی نیکی کماتے ہیں, وہ ہم خود شمار کریں گے, میں وہ آدمی میں ہوں کیوں, چلے ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں جی ہم نے یہ اعمال کیے ہیں, نیکی ہمارے پاس ہیں, ہم نے عمرہ بھی کیا ہے, حج بھی کیا ہے, 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں, ایک محدود نیکی تو ہے ہمارے پاس, سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں ہم تو اس آدمی شمار ہی نہیں ہو سکتے, اس نے تو کام ہی نہیں کیا ہوگا, تو ایک نیکی تلاش کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو بڑی نیکی ہے الحمد للہ. ذرا دوسری طرف آ جائیں, ایک نیکی کی بول کے میں کہتا ہوں زیرو ہو سکتا ہے, وہاں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ, جس کا آپ نے قرض لیا اس کو قرض دینا ہوتا ہے یا نہیں دینا ہوتا, دور سے بولے دینا یا نہیں دینا, یا نہیں دینا, قرض تو دینا دینا ہے, میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دیا اور دیا قرض, قرض ہنسنا کہتے ہیں اس کو, تو وہ قرض ہنسنا جو ہے مجھے آپ واپس کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ سر پہ چڑھا رہے گا نہیں چڑھا رہے گا, اور جب اس کو ادا کر دیں گے خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی, ہوگی. تو ایک قرض ایسے ہوں گے جو ہم نے آخرت میں دینے ہوں گے, وہ شکلیں نیکی جائیں گے, کس کی شکل میں جائیں گے, ہم نے قرض دینا ہوگا, کس کا قرض, کہ میں ایک شخص کی برائی کر رہا ہوں, غیبت کر رہا ہوں, اس کا قرض میرے سر پہ چڑھ گیا کہ میں نے اب اس کو اتنی نیکیاں آخرت میں دینی ہیں, اور دلوانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہوں گے, یعنی وہاں تو کوئی رک بھی نہیں سکتا کہ میں نہیں دوں گا, اس قرض کا دلوانے والے کون ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے تو ذرا ایک اور مراقبہ کر کے میں اور آپ یہ سوچیں کہ آج ہم نے کتنے قرض اپنے سر پہ چڑھا لیے ہیں. سوچ لیں دل کے اندر جو خیالات ہیں کسی کے خلاف وہ بھی قرض چڑھ گیا. زبان سے نکلی ہی بات, آنکھوں سے نکلی ہی بات, ہاتھ سے نکلی بات, طرز سے نکلی بات, دیکھنے والی بات کہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, کسی کو حسد سے دیکھ رہے ہیں, دشمنی سے دیکھ رہے ہیں, محبت سے دیکھ رہے ہیں, بغض سے دیکھ رہے ہیں. آنکھیں خود بتا دیتی ہیں کہ اس میں کئی شمار قسم کے گناہ کما جاتا ہے, کئی شمار قسم. یعنی صرف دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ یہ حسد کر رہا ہے, یہ جلن کر رہا ہے, یہ محبت کر رہا ہے, یہ بخل کر رہا ہے. سارا کچھ آنکھوں کے ساتھ اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جتنے انسان کے ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں ہوتے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. کتنے قرض چڑھ گئے میرے بھائیوں, جتنے قرض ڈیبٹ اور وہ جو کریڈٹ اکاؤنٹ بنتا ہے, اگر آج ہم شام کو بیٹھ کے بیلنس بنائیں, اپنے بیلنس شیٹ بنائیں کہ ہمارے پہ کتنے قرض چڑھے ہیں, تو خود فیصلہ کر لیں کہ کتنے قرض ہیں اور دلوانے والے کون ہوں گے. اللہ کریم بچ جائیں گے. اب یہاں تو چلو مار جائیں ڈنڈی, بینک کے پیسے کھا گئے, اس کے پیسے کھا گئے, چل رہا ہے معاملہ. کوئی کون کہتا ہے, کون دلوا سکتا ہے, کوئی یہ آ کے کسی کنڈی کھڑکا دے گا, حضرت صاحب آپ کے فلاں آدمی نے کھا لیے پیسے, تو بےچارے اتنے زور لگا سکتا ہے اور کتنا زور لگا سکتا ہے. یہ کسی آدمی کے پاس جائے گا, جناب یہ آپ فیصلہ کر دیں, آپ کو جاننے والا تھا, یہی ہوگا نا. وہاں تو زبردست معاملہ ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی. سب سے پہلے کہیں گے بچہ ادھر لے اپنی نیکیاں ساری, یہ کھڑا ہے اس کو پہلے نیکیاں دیتا ہوں, یہ کیا تھا یہ کیا تھا. سب کھڑے ہوں گے وہاں, پوری امت, علماء بھی, قاری بھی, حضرت صاحب بھی, پیر صاحب بھی, سب ماشاء اللہ لائن میں لگے ہوں گے. اور اس وقت پتہ چلے گا آدمی کہاں ہے اور کیا حساب ہے اس کا. تو میرا خیال ہے ہم تو اس میں شمار کریں جس کے پاس وہ ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. وہ ایک نیکی والا بھی مجھے لگتا ہے ہمارے مقابلے میں بڑا امیر ہوگا. ہوش کرنا چاہیے, عقل کرنی چاہیے, سمجھنا چاہیے, شعور پیدا کریں. موت سر پہ کھڑی ہے, موت سر پہ کھڑی ہے, قبر اتنی نزدیک لے کے جاتی ہے ہر لمحے ہمیں, کس قدر قریب کر رہی ہے انسان کو, کس قدر قریب کر رہی ہے. لیکن دو دشمن جو ہمارے ہیں, نفس اور شیطان, وہ چنگل چلاتے ہیں, وہ ٹیکس استعمال کرتے ہیں, وہ دھوکے دیتے ہیں, وہ غلط مشورے دیتے ہیں, وہ ایسے ایسے بڑے دھوکے دیتے ہیں کہ بیماری کے حالت میں انسان کو قبر سے دور رکھتے ہیں, موت سے دور رکھتے ہیں. وہ مواقع آنے ہی نہیں دیتے کہ کسی طریقے انسان اس چیز کی تیاری کر لے جو سنسار کو قابو آنے والا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں دوستو, غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ غم آخرت ہے, یہ فکر آخرت ہے دوستو. تو جب نیکی ہمارے پاس نہیں ہوں گی, وہ کہیں گے کتنی نیکی, کہتے 10,00,000,000,000 کے مکان چھوڑ گئے ہوں, اتنی جی گاڑیاں چھوڑ کے رہے ہوں, اتنے جناب یہ بنگلے چھوڑے ہیں, اتنی دکانیں چھوڑی ہیں, تو یا اللہ یہ سب کچھ تو آج اس کو دے دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو ٹھپ کر دے, اس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, صرف تو اتنی نیکی نکال دیتا کہ تیرا حساب میں پیدا. ان 10,000,000 بنگلے کوٹھیاں اور جو ہے بنانے کے چکر میں انسان نے کیا, وہاں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا آدمی, وہ تو کہتا ہے ویلیو کچھ نہیں ہے, وہ تو مٹی ہوگی, وہ تو ریت سے آنکھ بند ہو جاتی ہے, وہ تو ریت بن جاتی ہے, اس کا تو شمار ہی نہیں ہوتا. وہاں ایک دم جو آنکھ کھلتی ہے تو ایک نیکی ایسی اتنی قیمتی بن جاتی ہے کہ جس انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو بہت آد نہیں کیوں کی آج. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بزرگان یہ روایت ان کی ایک پیش کرتے ہیں. میں تو ایک بات کہتا ہوں بھائی, ایسی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں انسان کو کہ جس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے, یا کسی قسم کی کوئی اس پہ رسٹرکشن نہیں ہے. بھائی نماز کے لیے تو یہ نا آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تب نماز ہم پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, ہزار چیزیں, لیکن اللہ پاک نے تو ایسے وسائل دے دیے ہیں نیکیوں کے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہر لمحہ انسان نیکی کما سکتا ہے. کیا بات ہے اللہ والوں کی بھی عجیب چیز. میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں, دیکھیں وہ تو ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس چیز کی کہ نفس اور شیطان مارتا ہے ہمیں, وہ تو ہے دشمن عظیم ہمارا. تو ماشاء اللہ ایک مجموعہ تو ہے یہاں جو بیٹھا ہوا ہے, اور اس ایک مخصوص انداز سے کچھ لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ اور تصفیہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ مبارک کرے ان کو اور اس میں کامیابی دے. تو میں اس وقت اس مجلس سے بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی الحمد للہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مثال ہے ابھی اس لائن میں نہیں ہے. تو میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں بڑے, کہ بھائی दवा इंसान नहीं कर सकता। मैं आज करता हूं, नियत करता हूं, ठीक है जी मैं जी बस आज से काम करूंगा, बस मस्जिद से बाहर निकलूंगा, बाहर निकलते ही फोन आ जाएगा, फोन आते ही वो बात जो सुन गया तो शैतान उसको डिम करना शुरू कर देगा, दूसरे ख्याल को फिर सामने ले आएगा और फिर वो नेकी वाला बंडल पीछे चला जाएगा और फिर दुनिया का बंडल आगे आ जाएगा। अगर ऐसा ना हो, यानी ये गेम है इस दुनिया के अंदर, जीतता वो ही है जो सही रास्ता पर चलता है, सही हथियार पकड़ता है, सही नसीहत ले लेता है, नहीं सही एडवाइस ले लेता है, वो कामयाब होगा। वो मिसाल के तो मैंने यह बात की है, आप बुरा ना आए तो मैं अर्ज कर दूं आपसे, बहुत से लोग बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, बाहर निकलेंगे सुबह उनसे मुलाकात करूंगा तो डील हो चुके होंगे, उससे दूसरे डील हो चुके होंगे जी, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे होंगे जो मैंने स्टैंडर्ड सौंप दिया इंसान का, एक नेकी वाला तो काम नहीं होगा, कर्ज वाला। तो मैं एक नुस्खा आपके सामने पेश करता हूँ, बड़ा आसान नुस्खा है और ये बड़ा कीमती है जो मैं नहीं कह रहा, ये बुजुर्गाने दीन ने इसको अख्तियार किया है, इंशाल्लाह गारंटीड कह रहा हूं, गारंटीड कि आज जो शख्स यहां बैठा है जिस पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, इस वक्त कर्जा समझ गया ना, बता दें कर्ज की डेफिनेशन ठीक है ना आपसे, जो बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है और हालत यह है कि उस कर्ज को उतारने के लिए जेब बिल्कुल खाली नहीं, क्योंकि हमारी माँ समझ नहीं आया क्या हिसाब होगा, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि जो नुस्खा आपको पेश करूंगा, जिस मजलिस ऐसी है ना, बुजुर्गों ने गारंटी दी है चीज की कि ऐसा शख्स ईमान के साथ जाएगा और बख्शी के साथ जाएगा, अमीर तुरी इंसान को गुजरेगा। बताऊं तरीका, कमानी ही नहीं किया तरीका बता दूं आपको, लेकिन करना पड़ेगा, राहत खड़ा करो माशाल्लाह, बहुत आसान है। बुजुर्गों ने माशाल्लाह इसके तरीके निकाले, शैतान और नफ्स को कैसा मारा जाए, इसको कैसा उल्टा किया जाए, ये तो है ना कि इसको इसके साथ मुकाबला तो हमने करना है, ये तो इसके तो इसके मिशन है कि भाई इसको कहां लेके जाना है, खड्डे ही बनाना है इसको, तहसीक तहसीक करनी है, नंग उठाना है इसको, नंगा बिल्कुल आखिरत में उठाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे नेक इंसान पैदा किए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे तरीके से शैतान नफ्स से लड़ना आता है उनको, इसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप सुने एक तरीका आपको बताता हूँ, करेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है इसलिए मैं आपको ये बता दूँ क्या तो बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना अपने आप को, भी नेकी कमाना, हर का वक्त नेकी का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ आपसे ऑनेस्टली, आदमी कह रही हर वक्त नेकी कैसे कमाओ, दुनिया भी तो है ना, मामलात भी है ना, सारा कुछ है, तो एक काम कर लेते हैं, बस एक काम कर लें इंशाल्लाह ऐसी ऐसी नेकी कमाएंगे कि शैतान भी हैरान हो जाएगा किस तरह, बताऊं तरीका बड़ा आसान तरीका है कि किसी अल्लाह वाले के साथ दोस्ती कर लो। क्या बताया, किसी दोस्ती तो करते हैं आप नहीं करते, नहीं कारोबार की दोस्ती होती है, होती ही नहीं होती, बिजनेस की दोस्ती होती है, हम सहाय उसकी दोस्ती होती है, चलते चलते दोस्ती तो होती है दुनिया में, लेकिन मेरी बात भी मान लो, किसी अल्लाह वाले से क्या कर लो, मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा, किसी अल्लाह वाले से जो आपको अल्लाह वाला नजर आए, ये भी स्टैंडर्ड आपका अपना है, ये नहीं कि भाई कोई स्टैंडर्ड मैं दे रहा हूं आपको, नहीं अल्लाह वाला, तो किसी अल्लाह वाले से दोस्ती कर लो, इंशाल्लाह कलमा पढ़ते हुए जन्नत में जाओगे। अब मैं इसको कुरान हदीस से साबित करता हूं आपके सामने, गपे नहीं मार रहा, ये बुजुर्गों का तरीका है, कैसा तरीका निकाला उन्होंने, अब मैं डब्बा हूं बिल्कुल, डब्बा समझते हैं ना, कुछ भी नहीं अंदर, और ये मेरा हाल था, मैं अपनी मिसाल पेश कर रहा हूं, बिल्कुल डब्बा कुछ भी नहीं, मैंने क्या किया, एक अल्लाह वाले से दोस्ती कर ली, अब दोस्ती कर ली तो अब मैं बताता हूं क्या चक्कर चलता है, ये क्यों ऐसे हो रहा है मामला। जब आप किसी अल्लाह वाले के साथ दोस्ती करेंगे, खुद भी देख रहे हैं अपने गिरवाने मुंह डाल के, तो क्या होगा, दोस्ती की बात है ना, जब दोस्त बन गया कोई अल्लाह वाला तो जो वो करेगा वो आप भी करेंगे, वरना अभी दोस्ती नहीं, अगर दोस्ती होगी तो जो वो कर रहा है आप भी करेंगे, वो नमाज पढ़ रहा है तो आप कहें चलो हम भी नमाज पढ़ लेते हैं, वो तस्वीर कर रहा है तो कहें मैं भी तस्वीर कर लेता हूं, वो जिक्र कर रहा है मैं भी जिक्र कर लेता हूं,
उसको तहज्जुद पढ़ता देखता है, तहज्जुद की आदत, कहते चलो मैं भी तहज्जुद कर देता हूं। लो लेट करे, लेकिन एक दिन वो वही करने लगता है जो उसका दोस्त कर रहा है। देखिए घंटी है बिल्कुल घंटी बात है, तो होता ही है। आप किसी दोस्ती करके देख ले, आप पे वही रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा जो आपका दोस्त रंग। और इस दोस्ती के अंदर तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसको रास्ता कहते हैं। अगर ये मंजिल हमने लेनी है तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि इस दोस्त के साथ हमें क्या करना पड़ता है। तीन चीजें होती हैं, एक एतकाद, एक मोहब्बत, एक इताअत और खिदमत। जब ये तीन चीजें इंसान के पास होती हैं, एतकाद होता है उस आदमी पर कि भाई जो बात भी करेगा किसे कुरान और शरीयत की रोशनी में करेगा, मुझे एतकाद है इस पर। इसकी जो बात भी होगी किस पर होगी, एक ताजु इसके पास है, उससे आगे आगे नहीं जाएगा। ना कश्फ है, ना कलामात है, कुछ चीज पे नहीं मानता ये बात। जब भी कोई काम करना है इसे किस पे करेगा, कुरान और हदीस पर। कलामात ये वो कुछ नहीं, दो चीज हैं इसके स्टैंडर्ड, ये इसने सीखा है कुरान और हदीस। इस पर एतकाद रखा जाएगा कि ये हर बात कुरान और हदीस पर चलता है, तो ये एतकाद पक्का हो गया कि जो बात ये करेगा बिल्कुल सही कर रहा है। जब इंसान दोस्त बनता है किसी का तो क्या होता है, ला महला अल्लाह सुब्हानहू तआला, और इसमें खास तौर पर अल्लाह मदद फरमाते हैं ना, इसके अंदर खास क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे मोहब्बत भी पैदा फरमा देते हैं, खुद मोहब्बत हो जाती है शख्स, ला महला खुद ब खुद। जब उससे मोहब्बत पैदा हो जाती है तो मोहब्बत एक और काम करती है। मोहब्बत का दूसरा काम क्या होता है, एतकाद के साथ मोहब्बत। मोहब्बत क्या काम करती है आगे, वो फिर मोहब्बत ऐसी हो जाती है कि जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसकी भी नकल भी करने लगता है। तजुर्बा कर लें आप, ये मोहब्बत है। तो जब उस आदमी से उसको मोहब्बत हो जाएगी, कभी नहीं कहेगा वो आपको कुछ फोर्स नहीं करेगा किसी किस्म का, कि जो उसने किया होगा। और यही साइन है मोहब्बत का, यही तो है ना। हम कहते हैं आज नबी पाक से बहुत मोहब्बत है, मोहब्बत आशिक तो बहुत है ना, कितने आशिक हैं आज। लेकिन एक स्टैंडर्ड दे दिया कि मेरा आशिक तो वही है जो मेरी तबाह करेगा और इताअत करेगा, जो मेरी सुन्नत पे चलेगा, मेरा आशिक वही है। बाकी जो जो कहता है, जो जो भी स्टैंडर्ड अपना रखे, वो स्टैंडर्ड जो है ना मकबूल है, मोतबर नहीं है। एक एक मोतबर है जो क्या करेगा, इत्तबाए, जिस कदर सुन्नत का इत्तबा होगा इसी कदर मेरा वो आशिक होगा। अल्लाह की कहता फिर करते करते वो इतना बड़ा मेरा आशिक बन जाता है, तो फिर मैं उसकी उंगली पकड़ के अपने साथ ही जन्नत में ले जाऊंगा। बस सुनत ये हदीस है ना। तो ये मोहब्बत का तकाजा ही यही है कि अगर आपने उस शख्स से जिससे दोस्ती की है सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई, तो फिर आप में वाकई उसमें इताअत आ जाती है। तो जाहिर है वो तो अल्लाह वाला है, तो उसकी इताअत करेंगे तो जो कर रहे वो आपको करना पड़ेगी। तो नतीजा क्या होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते वो जिंदगी आपकी नेकियों से भर जाएगी, कर्ज उतरना शुरू हो जाएंगे, एक हजूम हो जाएगा नेकियों का जिसको आप संभाल भी ना सकेंगे। शर्त यही है कि तीन चीजें उसमें चाहिए, एतकाद चाहिए, मोहब्बत चाहिए और इताअत और खिदमत चाहिए। जिस वक्त ये कंट हो गया आपने उस आदमी के साथ, रबता शेख ये तस्वों की बातें कर रहे हैं ना, तो मजलिस ऐसी है हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर फिक्र की कोई बात नहीं। बस हमने तो सब आदत ही पड़ जाएगी उसकी नकल करने की, आदत ही पड़ जाती है आदमी को, भाई हम नकल करें उस इंसान की, जैसे वो करें हम भी वैसे करें। और इसी यही बात है कि जब किसी शेख को आप देखेंगे किसी खानकाह में आप जाएंगे, कैसे किसी अल्लाह वाले के आप पास जाएंगे, आप देखेंगे जितने भी उसके मुरीद होंगे सब में उसी का रंग नजर आएगा। आप जाके देख लें किसी खानकाह में, सब में उसी का रंग नजर आएगा। दूर से आदमी कहते थे ये जी फलां का मुरीद है, ये तो फला का मुरीद है, कहते हैं या नहीं कहते, इस तरह अल्लाह वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये फला साहब का मुरीद है, फला साहब का, क्यों, क्योंकि रंग चढ़ जाता है उस पर, तो कानून है। और इसकी बशारत जन्नत की जो मैं आपको दे रहा हूं कि ये ऐसे शख्स जिसने किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत की उस पर जन्नत जाएगा, वो जन्नत पर चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, गंटिड़ जाएगा, बख्शा बख्शाया होगा। मैं नहीं कह रहा है, अंस रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नबी उसने इरशाद फरमाया, खुद सरकार रसम का कौल है, अंत अहब्बा मन अहबबता, ये अल्लाह नबी सरकार की हदीस है कि जिससे तू मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ होगा, जिससे तू मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ होगा। तो अगर आपने ऐसे शख्स से मोहब्बत कर ली कि जो जन्नत कमाने के चक्कर में लग रहता है, नेकी कमाने के चक्कर में रहता है और दुनिया इसकी शहादत देते हैं कि नेक आदमी है, ये जन्नती आदमी है, तो फिर अल्लाह के नबी ने तो बता दिया कि किसके साथ जाएगा, अगर तेरी मोहब्बत इसके साथ है तो तू जन्नत में ही जाएगा इसके साथ। मेरे भाइयों, ये एक नुस्खा है जो अल्लाह ने पेश किया है शैतान और नफ्स से लड़ने का, कि हम तो बहुत कमजोर आदमी है, अकेला हम काम नहीं कर सकते, हम कोशिश करते हैं फिर हमें चक्कर देता है, ट्रकें मार देता है, तो इसके लिए जरूर बजरूर हमें किसी आदमी का साथ चाहिए, जरूर बजरूर हमें किसी आदमी के साथ दोस्ती चाहिए। और उसका इशारा ये दे दिया अल्लाह के नबी ने, इसको सबूत कर दिया कि अगर ये काम तुम करोगे, किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत करोगे, ताल्लुक रखोगे, दोस्ती रखोगे, तो तुम्हारी जन्नत के रास्ते खोल दिए चले जाएंगे। तो मेरे भाई, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस पर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये देखें, एक बहुत बड़े बुजुर्ग की मिसाल आपको शायद पहले भी दिया, फिर देता हूँ, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम अपने वक्त के गुजरे हैं, और आप सब उलमा कराम इनको जानते हैं, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो लिख रहे थे सीरत, नामुकम्मल रह गए थे, तो उनके ये शागिर्द थे, तो उन्होंने ये मुकम्मल किया और काफ़ी जिल्दों के अंदर सीरत है, और वो ऐसी मुस्तनद सीरत की किताब है कि पूरी दुनिया उसको मानती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब लिखी आपकी हयात मुबारका पर, बहुत मुस्तनद किताब है जिल्दों पर, और ये उनका तारीखी काम है, अल्लाह पाक ने उनसे लिया, सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस वक्त उन्होंने ये तहरीर ख़त्म कर ली, सीरत कितना बड़ा काम था, अल्लाह पाक ने लिया, तो उन पर अल्लाह ताला हर नेक काम करने पर एक अजर नसीब फरमाता है इंसान, याद रखें। वही हदीस फिर आती है कि जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसके साथ साथ करता है, तो उनकी मोहब्बत का ये एक इजहार था, वालाना इश्क था नबी पाक के, उन्होंने एक पूरी इतनी किताबें लिख दी सीरत की, और कैसे कैसे वाकयात लिखे होंगे, जब वो लिखते होंगे हदीसों को वाकयात को, तो किस कदर फरिश्तों पर रहमतें भेजते होंगे, आप सोचिए किस कदर उन पर अल्लाह ताला के फजल उन पे होते होंगे, और जो अब तक क्यामत तक जब दुनिया उस सीरत को पढ़ती जाएगी, तो मुझे बताएं किस कदर सवाब उनको पहुंचेगा, और नबी करीम सल्लम किस कदर उनसे खुश होंगे, अल्लाह ने कैसे उनको किस तरीके से इनाम बता फरमा, क्या इनाम मैं बता रहा हूं आप, यही नुस्खा। तो वो बैठ गए, उस वक्त तक उनका किसी शेख से ताल्लुक नहीं था, कोई आदमी नहीं पकड़ा था, लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूं आप कि अल्लाह सुबहान की सुन्नत है, अब कानून ऐसे ही है कि हर इंसान अकेला हो तो नफ्स और शैतान उसको जकड़ लेते हैं, चाहे किसी मुकाम पर भी हो, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनको इस तरीके से निकाला इस मुकाम से कि अकेला है, काम इसने बहुत ऊंचा किया है, और तो अभी इसने तो मरना है, मौत दूर है इससे, तो हो सकता है शैतान और नफ्स इतने बड़े काम के बावजूद भी इसको घेरा दे दे, तो इसको चाहिए कि ये जरूर किसी आदमी के साथ दोस्ती कर ले, ताकि गारंटीड हो जाएगी जनाब जन्नत में जाएगा इस शख्स। देखें कैसे अल्लाह पाक ने कहा, उन्होंने क्या था, उनका नफ्स था, मैंने इतना बड़ा काम किया है, मैं तो बहुत बड़ी तहरीर की है, फिर उसके बाद दुनिया की तारीफें, कोई आदमी को काम कर ले तो तारीफ करते हैं दुनिया, जाहिर है भैया तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो आदमी भूल जाता है जब तक कि किसी ने उसके नफ्स को ना मारा हो, वो तो भूल जाएगा, कुप्पा हो जाएगा, ये मेरा काम है जी, ये मैं कर रहा हूँ, फलाह हो रहा है, वो तो बड़ा खुश होता है, आप लोग सुन के बड़ा खुश होता है, और वो बेचारा घाटे में जा रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता मैं बर्बाद हो रहा हूँ, शैतान किस तरीके से उसको पकड़ रहा है, किस तरीके से जकड़ रहा है उसको पता नहीं, खुश होता है, अपनी तारीफ करने में भी खुश होता है और लोगों से तारीफ कराने में भी खुश होता है, उस शख्स बड़ा खुश होता है देख के। तो अल्लाह ने देखिए कितना बड़ा इनाम उनको दिया, कितना बड़ा इनाम दिया आखिरत का, क्या बैठे थे एकदम ख्याल डाला, जब तहरीर हो गई मुकम्मल उनकी किताब, एकदम ख्याल डाला, तो रो पड़े तनाई में, कहने लगे सलमान तूने ये पूरी सीरत की किताब तो लिख दी, इतना बड़ा तूने काम कर दिया, तेरे अंदर है क्या, तू क्या पाक भी है, तेरे अंदर कोई इसका असर हुआ है, तेरे अंदर कोई इसकी ऐसी झलक आई है कि तू भी इसमें से कोई अमल कर रहा है, देखिए अल्लाह ने कैसा एहसास दिया, वरना कौन उनका एहसास दिला सकता था, ये तो सिर्फ उसका इनाम था कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, अल्लाह ने कैसे निकाला, मैं वही रास्ता बता रहा हूं आपको कितना मुस्तैद रास्ता है। अब वो बड़े रोने लगे तनाई के अंदर, बड़े परेशान, तो परेशान होते होते अल्लाह ने उनके दिल में एकदम बात डाली कि भाई ये तो बात ऐसे ही है, क्या तुझे खुद अपने अंदर का नहीं पता, मिसाल के तौर पर आप तैयार होने हैं, आपने तैयार होने जुम्मे के लिए तैयार हो रहे हैं, और आपके घर में शीशा नहीं है, आपने इमाम बांधे हैं, सुरमा लगाना है, माशाल्लाह तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, शीशा नहीं तो कितनी परेशानी होगी आदमी, होती है ना भाई मैं कैसे तैयार हूं। तो आदमी का यही हिसाब है कि जब तक कोई सामने शीशा नहीं होगा उसको कैसे पता चलेगा मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरा नफ्स मुझे क्या चक्कर दे रहा है। तो फौरन वो समझ गए, अल्लाह ने ज्यादा उनके दिल में एकदम ख्याल आया कि इस वक्त जो सब बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा कबीर आदमी है, जिस पे दुनिया सारी झुकी हुई है, वो तो हकीम है, उम्मत है, अस्थान भी रहमतुल्लाह है। फौरन अपनी कटरी बांधी और सफर किया और पहुंच गए थाना भवन, इतने बड़े आदमी। और जब उनकी खानकाह में गए तो वो खुद हैरान, हजरत मैं इसको कहां बिठाऊं, तो इतना बड़ा, क्योंकि जिस लिहाज से वो इंसान थे वो तो बड़े मारूफ आदमी थे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये काम नहीं चलता, काम वही चलेगा जो मेरा कानून है, तुझे किसी इंसान को पकड़ना ही पड़ेगा सफाई के लिए। जो नुस्खा मैंने आपको बताया, खतरे खतरे इंसान का नफ्स और शैतान का खतरे ही खतरा है, कोई किसी को गारंटी नहीं है जब तक कि वो रास्ता इंसान ना पकड़ ले जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाया रास्ते। वो कहा जी मैं तो हजरत एक काम लेकर आया हूं। वो किस लिए तुम आए? कहते हजरत मैं तो अपनी सफाई के लिए आया हूं। तो हस्थानी कहते हैं रहमतुल्लाह, कहते मैं बड़ा परेशान हूं, मैं इसको क्या नसीहत करूं, फरमाते मैं इसको क्या नसीहत करूं, कहते ठहर जाओ, खैर वो तो हकीम उम्मत थे ना। तो कहते सोचता रहा मैं इसके साथ क्या मामला किया जाए, तीन रात तीन दिन वो उस खान का ठहरे हुए। और हाजिर बहुत से अल्लाह की तरफ रजू किया, तो अल्लाह वाले थे, अभी शक मैं अब इसका क्या इलाज करूं, ये क्या है, अल्लाह पाक ने उनके दिल में हल्का कर दिया, अभी इसके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, उसका मामला होगा। अब वो जनाब तीसरा दिन था, तो हजरत ने कहा भाई अब आप जा सकते हैं, तीन दिन आपके हो गए खानकाह में, तो चले जाएं। उस वहां पर उस वक्त आना जाना जो था, हजरत आरिफ बुल्ला जो थे हमारे डॉक्टर भाई, ये भी आते थे, हजरत शफी भी आते थे, उनका सारा सिलसिला चलता था, वो लोग सारे उनके मुरीद थे, तो वहाँ खानकाह में इनकी रौनक लगती थी। तो ये डॉक्टर हाई बता रहे हैं रहमतुल्लाह, कहते हैं कि फिर जनाब वो चौकड़ के साथ मुंह सर रख लिया और रोने लगे, रो रहे हैं। तो डॉक्टर हाई कहते हैं मैं गया, मैं हजरत क्यों रो रहे हैं आप? कहते हैं भाई क्या बताएं आपको भाई मियाँ, हम तो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते थे, हमने तो पता नहीं अपने आप को क्या कुछ समझा था, हमने तो पता नहीं अपने अंदर इल्म उलूम के हजून डाले थे, मैं कसम खा कहता हूँ वो कोई इल्म नहीं था, इल्म तो यहाँ पर है जो इनके पास है। और फिर उन्होंने शुरू किया, हजरत थानी हम तो तशरीफ लाया, कहता है भाई अब आप जा रहे हैं, कहता हजरत की नज़र, वो कह रहे हैं उनसे, तो हजरत अलका किया उन्होंने, या मैं तसव्वुफ की बात, अलका किया तो हजरत के जबान से जो लफ्ज निकले वो काम बन गया। उन्होंने कहा कि भाई जिस लाइन के लिए तुम आए हो, जिस काम के लिए तुम आए हो, वहां तो एक ही चीज से काम बनता है कि फना हो जाओ, ऐसे एक हाथ से फना हो जाओ। तो फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत ने हाथ से इशारा किया फना हो जाओ, तो कसम खा कहते हैं सारे जिन बुलाएं और जितनी शैतान तक पर सकता एकदम मेरे सीने से निकल गया, सारी दुनिया मेरी तब्दील होगी, वो सलमान कहते हैं मेरी हर चीज खत्म हो गई। और डॉक्टर हैफ हमला फरमाते हैं कि फिर काफी कुछ दिनों के बाद मुझे उनके घर जाना हुआ, और मैं उनको जानता था क्या हालात थे उनके, जब मैं घर पे गया तो वो घर मुझे वो घर ही नजर नहीं आता था, वहां सिर्फ चटाई थी, एक लोटा था, एक तस्वीर थी, एक दातन थी, पूरा घर जो था तवाजा अनकसारी और एक अजीब कैफियत का घर बन गया था। तो मेरे भाइयों ये मामला है, ऐसे ही है, ये एक नुस्खा ये है जो मैंने आपको बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नुस्खा करना चाहिए कि किसी अल्लाह वाले से साथ तीन हालात के साथ ताल्लुक पैदा करें, ये हालत होनी चाहिए, अगर ये हालत नहीं तो काम नहीं बनेगा। कौन सी बताएं तीन हालत? एतकाद हो पूरा, चाहे दुनिया जो चाहे कहे नहीं मेरा शेख, उसके जरिए से आपको रास्ता मिल गया, आपने जो जो चाहे लेकिन मेरा शेख ही है। एतकाद इतना पक्का हो, हजरत फरमाते थे कितना पक्का हो कि जितना बड़े भी बुजुर्ग कोई आ जाए, इज्जत सबकी, एहतराम सबका, लेकिन एतकाद किससे? अपनी शेख से। तीन चीजों को साथ साथ रखकर आप किसी बुजुर्ग से ताल्लुक रख रहे, मान आपको कोई पैसा देना है, ना चंदा देना है, ना आपने कोई वहां से माल देना है, ना दुकान देनी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तीन चीजें आपको पैदा करनी होंगी उस आदमी से ताल्लुक रखने के लिए। नंबर एक, एतकाद, पक्का एतकाद हो, ये नहीं डोल जाए, क्योंकि इसमें टेस्ट होते हैं, इम्तहान आते हैं, याद रखना, क्योंकि अल्लाह तक पहुंचना है भाई, लंदन तक पहुंचना, तो कई टेस्ट इंसान के आ जाते हैं, आते ही नहीं आते, ٹکٹ نہیں ملا, بس نہیں مل رہی, دھکا لگ رہا ہے, فلاں ہو گیا, سیٹ نہیں مل رہی, یہ نہیں بولا, عمرے میں جانا ہو, کتنے ٹیسٹ آ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تک پہنچنا ہے, اپنے مولا تک, اپنے مولا تک پہنچنا ہے, تو اس میں ٹیسٹ نہیں آئیں گے. تین ٹیسٹ پاس کر لیں, تین ٹیسٹ, کہ اس شیخ سے اعتقاد کو پکا کر لیں چاہے دنیا کچھ ہو جائے, نمبر دو اس کی محبت ضم ہو جائے, نمبر تین اطاعت و خدمت مکمل سے کریں. جب تین چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ جو تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں, دوستی بتا رہا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا, گارنٹیڈ ہے نبی پاک سے, یہ گارنٹی اللہ کے نبی نے, جس سے جو محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ پہنچ جائے گا جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.